السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک ایک قدم پہ اور ایک ایک منٹ کا بہترین اجر عطا فرمائے جو آپ اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اٹھاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو گھروں میں اس وقت کتنی چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ بھی بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023 DQ 2023. آج الحمدللہ ہم اس میں سورۃ روم سے شروع کریں گے جو کہ 21st پارے میں ہے. آج کے اس پورشن میں جو کچھ ہم دیکھنے والے ہیں وہ ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حقیقت میں ایک ایسے کنویں کی طرح بنا دیا ہے کہ جس میں سے جتنا پانی نکالتے جائیں اس میں سے اور اتنا پانی نکلتا آتا ہے اور میٹھا ہو جاتا ہے. آپ میں سے کسی کو شاید اتفاق ہوا ہو کہ کنواں دیکھا ہو. اب دیکھیے پورا آخری اس کے پیندے تک جو پانی ہے نا لوگ نکال دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اوور نائٹ جب چھوڑ دیا جاتا ہے نا تو اگلے دن پھر اس کے اندر پانی آیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب کنویں آپ ہیں, سن کے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جلدی جائیں, چھٹی ہو ہم گھر جائیں, چھوڑیں پارے کب پورے ہوں گے, دور قرآن پورا ہوگا بھی کہ نہیں, اور افطاری اور پکوڑے اور سموسے, پھر آج کیوں آ کے پھر بیٹھ گئے؟ کیونکہ کنواں ہے نا. آپ اتنی دیر میں آپ ایگزاسٹ ہو کے آپ کہتے ہیں نہیں جو مرضی کر لو, لیکن جو مزہ اس میں وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا اور آپ کو لینے والا بنا دے. آج ہم جو حصہ کریں گے اتلو ما اوحیہ, یعنی یہ 21st پارے کا سیکنڈ پارٹ ہے, اس کو سامنے رکھ لیجیے. اور آج کے پورے وقت میں اور خاص طور پہ پھر ہمارے آج کے پورے گول میں جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے. اللہ کرے کہ ہم جلدی سے وہاں پہنچے جائیں. تو عظمت صحابہ اور نفس سلم دونوں ہی اس میں آپ کو دکھے گی. آج کا جو تھیم ہے وہ ہے اپنی محدودیت کو جاننا. ہم میں سے کوئی بھی حرفن مولا نہیں ہے. میں یہ سوچوں کہ مجھے سب پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ, غلط ہے. اللہ کے نبی تو نبی تھے, اور استاد جیسا ہوتا ہے شاگرد ویسے ہو ہی جاتے ہیں, الا یہ کہ جن کا ارادہ ہی نہ ہو یا پھر جو فوکس نہ ہو. ادروائز شاگرد کے اوپر استاد کا رنگ ضرور آتا ہے, یہ پکی بات ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ شاگرد ہی نہیں بنتے, وہ صرف انفارمیشنز کو ہی علم سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ اور بات ہے. پھر ان پہ کئی طرح کے رنگ آ جائیں گے. صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بہت گہری چھاپ کی طرح تھی, اور وہ کیا تھی کہ آپ سب اپنی محدودیت کو جانتے تھے. اور یہ ساری بات آج کے تھیم میں میں آپ کو جس پہ لے جاؤں گی بعد میں, وہ ہے غزوہ خندق. اللہ کے نبی کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے, خاتم النبیین تھے, سید المرسلین تھے, سب کچھ جو ان کی خوبیوں میں ہم کہہ سکیں وہ لے لیں. اس کے باوجود آپ کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کرتے تھے. آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے, پھر ان کے سامنے وہ معاملہ وہ میٹر پیش کرتے, پھر کہتے اشیرو علیہ ایہا الناس, اے لوگو مجھے مشورہ دو. آپ ظاہر سب سے مشورہ طلب کرتے, مگر عملاً کیا ہوتا؟ کچھ دیر خاموشی رہتی, اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے, مختصراً سے اپنی رائے ظاہر کر کے پھر بیٹھ جاتے. اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے, مختصراً کچھ بول کر بیٹھ جاتے, اور اس کے بعد پھر معمولی طور پر کچھ لوگ بولتے. یعنی کوئی کراس کوسچن نہیں, کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں, کوئی افس اینڈ برڈس نہیں, اور تھوڑی دیر میں اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا. اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے مشورہ کر کے اور مشورے میں اپنی رائے دے کر چپکے سے بیٹھ جانے کی اتنی عادت ڈال دی تھی کہ کبھی ان کے ذہنوں میں یہ سوال تک نہ آیا کہ میرا مشورہ مانا کیوں نہیں گیا. لکھیے مشورہ مشورہ ہے, حکم نہیں. کچھ لوگ ایک تو مشورے دیتے بہت ہیں اور وہ بھی مفت بن کہے, اور اگر پوچھ لیا جائے اور دے دے اور ان کا مشورہ نہ مانا جائے ادھر تو چپ ہو جاتے ہیں, بعد میں بڑھ جا کے کہتے ہیں میری بات تو نہیں مانی گئی, میں نہیں آؤں گی, میں نہیں بیٹھوں گی, میں نہیں میٹنگ میں آؤں گی. اور خدا نہ خواستہ پھر اگر انجام میں کچھ گڑبڑ ہو جائے اور جو انہوں نے مشورہ دیا تھا وہ درست ہی ہو. وہی مثال جو بھی دینے لگی آپ کو عبداللہ بن ابی, क्यों मुकामे शौत से रुखसत हुआ था 300 को लेकर? कहने लगा मेरा मशवरा नहीं माना। इसकी ख्वाहिश क्या थी कि ओहद की जंग मदीना में रह कर लड़ी जाए ताकि हमारा निफाक छुप जाए। सो रहे हैं जाग रहे हैं किसी को क्या पता, बाहर जाएंगे तो फिर तो मर्दाना वार जाके जिहाद करना पड़ेगा। राय नबी की भी यही थी लेकिन सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा तो मुकामे शौत पे जाके आपको ये ख्याल आया कि आपकी बात नहीं मानी, अब घर से क्यों निकले? निकल गए। लेकिन वो मुनाफिक जो होता है ना वो देर तक नहीं चलता, शुरू में बहुत होता है, बल्कि हर जगह पहले पहले होता है ताकि देखो हो क्या रहा है, प्लान क्या बन रहे हैं, होना क्या, अच्छा चलो देखते हैं, कोई आसान चीज़ है मुश्किल है, अब क्या होता, चला जाता, माइंड करता। साहबे करम ने कभी मशवरा रिजेक्ट होने पे या ना मानने पे बुरा नहीं बनाया था क्योंकि उनको अपनी महदूदियत का इल्म था। हम अपनी समझ से आपको ये बता रहे हैं, आगे देख लीजिए, आप अल्लाह के रसूल हैं और देखिए नबी के आगे कौन बोले। लेकिन नबी की आजजी तो देखिए कि वो हर बात पूछा करते थे, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त आ गया और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का वक्त आ गया। सेम वही आदत जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, हज़रत उमर फ़ारूक से पहले अबू बकर का जो दौर था सिर्फ 2 साल का था, हज़रत अबू बकर भी जो मामला पेश आता लोगों को जमा करते, मशवरा तलब करते। अब इसमें कौन बोलता? अबू बकर तो मांगने वाले हैं, तो फिर उमर खड़े होते थे, मुख्तसर सी राय देकर जाहिर करते और बैठ जाते। इसके बाद फिर चंद लोग बोलते और फिर मशवरा इत्तफाक के राय से होके फैसला होता। उसके बाद कोई इस पे एक कमेंट भी नहीं देता था, चाहे फतह हो के शिकस्त हो, जीत हो के हारो, जिंदगी हो के मौत, कि मेरा माना मैंने तो पहले ही कह दिया था। अच्छा हम क्या कहते, मैंने तो पहले ही कह दिया था, मुझे पहले ही पता था, मैं बोली नहीं, मैं तो बोली थी, किसी ने सुना नहीं, मशवरा मांग तो लेते हैं, मानते नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं की। और आपको पता कि उसके बाद हज़रत उमर का दौर आता है, उसके बाद तो सहाबा में से ज़्यादा कम, यानी असहाब की तादाद कम और गैर सहाबा की तादाद ज़्यादा हो गई, तो फिर हज़रत उमर ने मशवरा कम करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता था कि मेरे सामने के जो लोग हैं ना ये ट्रेंड नहीं है, अभी इनका वो तज़किया नहीं है, अभी उनकी वो तरबियत नहीं है। अब जब ज़ाहिर एक छोटी सी बात है मगर ये इतनी अहम बात है कि तारीख़ में, हिस्ट्री में कोई दूसरा मुआशरा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने इस बात का सबूत दिया हो। और ये तर्ज़ अमल सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होता है जब कोई बंदा अपने आप को पहचान ले। खुद शनासी असल में खुदा शनासी है, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। जब बंदा खुद शनास होता है फिर उसको अपनी कमियाँ समझ आती हैं, फिर अपनी महदूदियत समझ आती है, फिर वो समझ जाता है कि समझ मुझ कुछ कोई नहीं है, वही बस अल्लाह ने कुछ काम लिया। आप यकीन करें कि वो लोग जो अल्लाह के दीन के काम करते हैं ना, दूसरे लोग उनसे बड़े मुतासिर होते हैं, यानी कुछ नाम भी सुन लेते हैं ना, फलां बड़ा फलां बड़ा, याद रखिए वो इंसान है, 100 गलतियाँ करते हैं, ये अलग बात है कि उनकी गलतियों को अल्लाह मेंशन नहीं कराता, लेकिन काम कर रहे हैं ना, इखलास है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अमवालिकुम वला सुवरिकुम, सूरतों को नहीं देखता, मालों को नहीं देखता, कुलूब और अमाल को देख रहा होता है। तो अल्लाह ने हम सब के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं, इसीलिए हम आकर आपको यहाँ पढ़ाते हैं। ये मैं अपने समेत हर एक का बात करूँगी, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला व मा तौफीकना इल्ला बिल्ला। किसी की ताकत नहीं है कि एक लफ्ज़ पढ़ा सके, एक लफ्ज़ लिख सके, एक मिनट के लिए टेक्निकल इश्यूज़ को संभाल सके, किसी इंस्टीट्यूट का बड़ा बन सके, वो इफ्तारियों को अरेंज कर सके, वो वहाँ भारी पेमेंटों को मैनेज कर सके, वो वहाँ के कोर्सेज़ को ले, उनकी आईडीज़ को इश्यूज़ करे, वो वहाँ के फॉर्म बनाए, वो उधर की वेबसाइट्स को देखे। मेरे पास तो 101 प्रोजेक्ट होगा, मैं एक रवानी में बोल भी दूंगी अल्लाह की रहमत से। जो भी कर रहा होता है ना वो बस अल्लाह पे नज़रें लगा के करता है। फ़ायदा इससे ये होगा कि आप जब ऐसे लोगों में अगर कोई कमी बेशी देखेंगे तो आप कहेंगे इंसान है, ह्यूमन एरर हमेशा रहेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे मैसेज का जवाब ही नहीं दिया, मैंने मैसेज छोड़ा था जवाब नहीं आया, चेक करेंगे ना सिर्फ 10 मिनट पहले आपने मैसेज किया होता, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, जवाब ही नहीं देते। ये तो दे ऑल आर ह्यूमन एंड दे ऑल आर हैव द शॉर्ट कमिंग्स। हम अपनी कमियों और अपनी महदूदियतों को पहचान कर खड़े हैं ना, अल्लाह आखिरी दिन तक खड़ा करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी, अल्लाह ने कहा नहीं आप ही जाएँ, फ़कूला कौलन लय्यिना। क्या था अल्लाह कहते हैं हारून आप जाइए, लेकिन ना मूसा जो है सही बात नहीं करते और इनकी आवाज़ में लुकनत है और ऐसी आखिर फिरौन है, आप चले जाएं। नो, चुना मूसा को, रिद्दा बनाकर वजली वज़ीर मिन अहली की दुआ कबूल करके हारून को साथ कर दिया। तो टीम वर्क में होता क्या है? अब एक कमी मेरे में, एक खूबी भी होगी, क्योंकि अल्लाह ने किसी को बग़ैर खूबी के पैदा नहीं किया। अब हम 10 लोगों की टीम है, 10 में 10 खूबियाँ और 10 खामियाँ, फ़ायदा क्या होगा? मेरी कमियाँ आप पूरी कर देंगे, आपकी खूबियों से मैं फ़ायदा ले लूँगी। एक आप में कमी, एक मेरे में, एक उसमें, तो फ़ौरन कॉम्पनसेट करता है। अब देखिए, मैंने एक दफ़ा किसी से सवाल किया था कि अगर पायलट को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होता है। उन्होंने कहा कि पायलट के साथ को पायलट बैठा होता है, उसको कुछ होगा ये होगा। मैंने सवाल किया अगर जहाज़ का इंजन फेल हो जाए, उन्होंने कहा जहाज़ के साथ एक और इंजन के साथ दूसरा इंजन होता है। दैट इज़ द आंसर। कमियों को महदूदियत को समझे। तो अपना हर काम करते वक्त अपना कोई रिप्लेसमेंट रेडी करिए, सिर्फ वही जीतता है जो अपनी ज़िंदगी में अपने साथ कुर्सी पे लोगों को बिठाता है कि मैं इधर से हट गया तो तुम तो हो गए। बाप अपनी ज़िंदगी में बेटे को गद्दी पे बिठाता है तो बेटा सीख जाता है। वो माँ जो अपने सामने बेटी को चमचा पकड़ाती है, वो ससुराल में जाके रोती नहीं है माँ की जान को, और सास उसको जालिम और बड़ी बुरी नहीं लगती। तो ज़िंदगी में अपनी कमियों को पहचाने, और वो दूसरे के है के मुकाबले में अपने नहीं से वाकिफ़ हो जाए, जेम बनाइए, और देखेगा इसके कितने जेम्स आएंगे। मैं सोच के अभी खुश हो रही हूँ। वो दूसरे के है, आप सब में खूबी है, इसके मुकाबले में अपने, अब मैं अपनी तरफ उंगलियां कर रही हूँ, अपने नहीं से वाकिफ़ हो जाए। आप में ये खूबी है, मेरे में नहीं। आपको ये काम करना आता है, मुझे नहीं। आप एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ। अभी भी नहीं समझ आई ना, तो बहू और सास की मिसाल दूंगी, एक सेकंड में आप समझेंगी। सास बहू का मामला है, बहू में खूबी है, आप में नहीं है। तो अच्छी सास क्या कहेगी? चलो आज तक तो मैंने ही घर चला लिया ना, जैसा तैसा। बेटा जी आप आगे बढ़िए, आप घर को ज़रा डिकोर कीजिए, आप में है, मेरे में ये खूबी नहीं थी। और बहू क्या कहती है? अम्मा रोज़ ही चावलों में या पानी कम हो जाता है या ज़्यादा, कभी सूखे रह जाते हैं, कभी गले रहते हैं। इस कहते हैं कि मेरे में भी है नहीं है ये टैलेंट, मेरे में नहीं है। आपके चावल बड़े अच्छे हैं, ज़रा मुझे सिखा दें। 1 साल बाद बहू सास से भी अच्छे पुलाव बिरयानी जरदे सब कुछ बनाएगी, और सास के हाथ फारिग, फिर खुश भी होगी, दूसरों को भी कहेगी मेरी बहू खाना पकाती है। और अगर आप कहते मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, सारी ज़िंदगी आपने अपनी इस बहू को चमचा नहीं देना, झाड़ू पकड़ा देंगे, चमचा नहीं देंगे, ताकि आप कह सके खाना तो मैं ही पकाती हूँ, टेस्ट ही बड़ा, मेरे हाथ के बगैर खाते ही नहीं बच्चा। अब ये कल की बच्चियाँ आखिर क्या पकाएंगी, समझ रहे हैं? ये टोन होती है हमारी। नहीं, खाना नहीं इनसे पकवाना हमने। और बाद में दो दो तीन बेतकल्लफ दोस्तों में बैठ के कहना भी है कि सारा दिन थक जाती हूँ। बहू क्यों 7 बजे उठे? आपने उसे काम नहीं कराना, वो तो 9 बजे शुरू में उठेंगी, फिर 10 पे, फिर 11 पे, फिर उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे जल्दी उठना चाहिए। तो हमेशा अपनी कमियों को पहचाने। यकीन करें, मैं यहाँ आके बैठती हूँ ना, पहले मैं अपनी सारी कमियाँ सोच के बैठती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आपके हर पारे से पहले आप मेरे साथी जो मेरे साथ इस टीम में, मैं कहती हूँ कभी उनसे पूछिए तो सही कि मैं उनके कितने सब्र के इम्तिहान लेती हूँ। वल्लाही मुझे अल्लाह भी माफ़ कर दे और वो भी कर दे, और वो फिर जमे हुए और रो रो के काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा फ़ायदा है। इसलिए कि मैं नहीं जानती कि अल्लाह ने मुझसे आज क्या कहलवाना है। मैं आती हूँ, मैं जब पूरी तैयारी करके आती हूँ जो मैं कर सकूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मैंने क्या कराना है। हर पारे पे इस्तखारा, हर पारे पे अल्लाह दिल में बात डालता है। सारी रात कोई एक चीज़ चल रही होती है, फजर की नमाज़ में कोई अल्लाह दूसरी बात डाल देता है। आने से पहले तक चेंजेस करवाती हूँ, ये जो आप लोग देखते हैं, आने से पहले तक। और हालांकि 1 साल पहले काम शुरू होता है, पूरा साल दौरे कुरान पे काम होता है हमारे अल्लाह की रहमत से। और कितने लोग हैं आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन लास्ट फाइनल वर्जन ये नहीं और है के बीच में अटका होता है, और वो भी इशारे के मंतज़िर होते हैं कि जल्दी हुक्म कीजिए आप, और वो खुश होते हैं इस पे कि आप मौजूद हैं। तो आप बताइए, उनमें कोई अना रह नहीं है? लो जी हमसे काम कराया, यूज़ ही नहीं किया। सफ़ों के सफ़े लिखे होते हैं जो मैं नहीं यूज़ कर पाती, मुझे पता वो ज़ाया नहीं होना, उनके वैसे ज़ाया नहीं होने, और मैंने उसको कहीं और यूज़ कराना ज़रूर है। मैंने इन्हें कहा एक भी चीज़ लिखी और मैं ना कहीं पढ़ूँ या वक्त है नहीं, आप संभाल दें, मैं उसको किसी और में यूज़ करूँगी, आपका मैं ज़ाया क्यों करूँ? तो टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। मुझे क्या आता है, ये तो आप जैसों को पता ही नहीं है कुछ, आपने कभी किसी अच्छे बंदे की बात ही नहीं सुनी, मेरा ख्याल है जो आप सुन रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता, हम सिर्फ और यहाँ आकर एक बात कहते हैं कि अल्लाह हमारे ऐबों को, पर्दों को कर, जहाँ जैसे रखे वहाँ भी रखना। हाँ, दिल साफ है, नीयत अच्छी है, इरादा है, ख्वाहिश है, लोगों के लिए तड़प है, तो आता तो कुछ नहीं, तू करा ले। तो जो बंदा अपने आप को हकीकत पसंदाना नज़र से देख लेगा ना, वही जीतेगा। और मैं एक जुमला बोलूँ जिसके बाद आप तड़प के रह जाएंगे, इतना कड़वा जुमला ये, इतना सच्चा है। बेसिकली वो जैसे ज़ख्म पे टेंचर लगता है तो एकदम जान जाती है ना, फिर ठीक हो जाती है थोड़ी देर में। लिखिएगा, अपने आप को उस नज़र से देखिए जिस नज़र से दूसरे आपको देख रहे होते हैं। कितनों को समझ आ गया? हम अपनी नज़र में तुमार खान, रुस्तम, सहरा, फुला फुला, दूसरे हमें देख के हंस रहे होते हैं, मैं क्या बात करूं, छोड़ो ना। तो अपने आप को इस हकीकत पसंदाना नज़र से देखने लगे इंसान जिस नज़र से दूसरा शख्स उसे देख रहा होता है। मेरे चेहरे पे अगर कोई धब्बा होगा तो मुझे नहीं इस वक्त दिखेगा, आपको दिख रहा होगा। जो करीब बैठे होंगे उनको ज़्यादा दिखेगा, दूर वालों को कम दिखेगा। आप क्लोज़अप, जूम इन जूम आउट करें, चेहरे का एक एक पोर दिखने लग जाता है उसमें। और दूर से देखें तो चमकती हुई प्लास्टिक सर्जरी वाली स्किन्स दिखती हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे लोगों की, है ना। तो बस एक बात याद रखिए, और वो क्या है कि जिस अबू बकर और उमर की बातें हम आज करते हैं ना, ये हैं तारीख़े तकमील वाले उमर और अबू बकर। तकमील हो गई है दीन की भी और इस्लाम की और नबी के ज़रिए। वो जिस दौर में एक दूसरे की और नबी की बात को सुनते थे, वो आगाज़े तारीख़ थी। किसी को नहीं पता था कल अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब मिलना है, किसी को नहीं पता था कल उमर फ़ारूक बन जाने, किसी को नहीं पता था अबू बकर फितनों के आगे एक दीवार बन के खड़े होंगे, और किसी को नहीं पता था कि उमर फ़ारूक के ज़ेरे तसल्लुत 23 लाख मुरबा मील जगह आ जानी है। लोग बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप देखिए कि मुझे और आपको कोई बचपन से जानता हो, कभी भी आप उसको नहीं मुतमईन कर सकते। भाई बहन, सारी दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी, भाई बहन आपका कोई नक्श निकालेंगे, आपकी बचपन की दोस्त हैं, मुझे पता है ये ऐसी है ये वैसे, क्योंकि उन्होंने आपकी वो बहती हुई नाक भी देखी होती है। आप एक चुटिया घोल कर एक बंद करके फिर रही थी, घर वालों ने देखा होता है। अब उस वक्त कोई आपकी इज्जत करे, बड़ी मुश्किल बात है। कल शोहरत और इज्जत और बुलंदियाँ मिल जाएं तो सब जानते हैं। तो याद रखिए, अपने हम असर, अपने सेम टाइम के लोगों को पहचानना और उनकी बात के आगे जवाब ना देना, ये है असल में अपनी महदूदियत को पहचानना। आज सहाबे किराम हमारे लिए गुजरी हुई तारीख के सतून हैं, जिनको हम इस तरह देखते हैं जैसे इस बिल्डिंग को देख रहे हैं आप, क्योंकि इसके पिलर्स हैं नीचे। तो अबू बकर और उमर को तारीख बनने के बाद जानना इंतहाई आसान है, जैसे आज हमारे लिए। लेकिन अबू बकर और उमर को तारीख बनने से पहले जानना इतना ही मुश्किल है। और असहाबे रसूल वो थे जो इस मुश्किल तरीन मेयार पे पूरे उतरे। तो आज इस पारे में हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने 22nd पारे में, और कुछ इधर भी इसमें भी हिस्सा आएगा, कि जब खंदक का मौका आया और 10,000 का लश्कर मक्का से निकल आया मुसलमानों को ख़त्म करने, और सारे ही मिल गए, पीछे से शायद यहूद की थी और आगे उन्होंने छोटे बड़े सारे कबीलों को जमा करके, वो जैसे नहीं लोग अपनी पार्टी के लोग दिखाने के लिए तस्वीर जब खिंचाते हैं ना, तो घर के नौकरों को भी बुला लेते हैं ताकि हम ज़्यादा लगें, सबको बुला लाए कि आओ चलो सब इकट्ठे जाके इनको ख़त्म करें। मदीना की आबादी भी उस वक़्त पूरी 10,000 नहीं थी, और ख़बर मिली कि वो निकल आए हैं, चलो शुक्र है उस वक़्त कोई तेज़ ट्रेनें और बसें नहीं थी कि चंद घंटे में आते, कई दिन लग जाते थे, अब तो लगते थे। और उस वक्त अल्लाह के नबी ने सबको इकट्ठा किया, लोगों मुझे मशवरा दो कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो उस वक़्त फिर एक शख्सियत सामने आई, सलमान फारसी, कि जिनको अल्लाह ने वाकई उस वक़्त चुना, और उन्होंने कहा कि नबी, फारस में हम तो दुश्मन से मुकाबला अपने और उनके बीच में एक डिच खंदक खोद के करते हैं, दुश्मन हम तक पहुंच ही नहीं सकता, तुम्हारे का कैसे। अल्लाह के नबी नबी होने के बावजूद अपनी महदूदियत को पहचान गए, कहा कि ऐसे ही करेंगे, और फिर जो खंदक खोदी, ये सारी कहानियाँ हम करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी जितना वक्त होगा सूरत अल अहज़ाब के साथ, बीच बीच में जहाँ आयतें आएंगी बताती जाऊँगी। अल्लाह के नबी ने उनकी मानी, और चूंकि मक्का वालों के जहन में भी ये ख्याल नहीं था, ये स्ट्रेटेजी तो कभी मक्का में अरब में देखी नहीं थी, अब वो तो हुम खुमा के आए, आगे आए तो मुसलमान और उनके बीच में एक खाद इतनी चौड़ी खाई है कि क्रॉस नहीं कर सकते, और इधर कहीं कहीं बुर्जियों पे मुसलमानों को बिठा दिया, दैट्स इट, कुछ नहीं हुआ, ना तीर टूटा ना तलवारें चली, एक आध जगह से खंदक ज़रा कम चौड़ी थी तो कुछ कुफार ने उसको अबूर करने की कोशिश की, मुसलमानों के तीरों ने उसको भगा दिया, दैट वाज। तो गजवा खंदक हथियारों की जंग नहीं थी, असाब की जंग थी या सर्दियाँ थी, क्या कहानी है। तबूक में अगर शिद्दत की गर्मी तो खंदक में शिद्दत की सर्दी, और ये हद फासिल है गजवा तबूक। इसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा था वो नहीं आया करेंगे, अब हम जाएंगे। इससे पहले की जंगें सारी दिफाई जंगें थी, डिफेंसिव वॉर्स थी, इसके बाद की इकदामी बन गई, ऑफेंसिव बन गई, इस्लाम तरक्की कर गया। तो बहरहाल आज के इस हिस्से में जो शख्सियात तीन आएंगी, जो मैं अभी नहीं बता रही, साथ साथ बताऊंगी, एक हैं सलमान फारसी, जैद बिन हारिसा और ज़ैनब बिनते जाहश रदी अल्लाह अन्हा, जो अल्लाह के नबी की पुपीजाद बहन थी। इन सब का किस्सा मोस्टली सूरत अहज़ाब के साथ आएगा। आज की दुआ, रब्बी जालनी शक्का रल्लक जक्का रल्लक राहिबल्लक मितवाल्लक मुखबितनलक अव्वाहम मुनीबन तकब्बल तौबती वअग्सिल हौबती वअजिब दावती वसब्बित हुज्जती वहदी कल्बी वसद्दित लिसानी वसलुल सखीमत कल्बी आमीन सुमा आमीन। अगर ये दुआ मेरे हक़ में मेरी कबूल हो गई और आपके आपके हक़ में, तो जिसको कहते हैं ना तर जाएंगे। सुनिए कैसा इसका तर्जमा। ए अल्लाह, मुझे अपना बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, बहुत ज़्यादा याद करने वाला यानी करने वाली, और तुझसे डरने वाला बना। मुझे अपना बहुत ज़्यादा फरमा बरदार बना और अपनी तरफ रुजू करने वाला बना। मुझे तेरे हुजूर गिड़गिड़ाने और तेरी तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक मिले। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को धो दे, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरा उज़र कबूल फरमा, मेरे दिल को हिदायत दे और मेरी ज़ुबान को दुरुस्त फरमा दे, और मेरे दिल का खोट दूर कर दे। यह अदबुल मुफरत इमाम बुखारी की किताब है, यानी ये सही बुखारी नहीं है लेकिन है, राइटर एक ही है, अदबुल मुफरत, उसकी 665 हदीस है। यकीन कीजिए इस दुआ को याद करें, और ये आपको जितनी दुआएं दी जा रही हैं, आपको होता है कि डेली ईमेल में जाती है आपको, आप इसका एक बुकलेट बनाकर इसको अपने पास रख ले, जहाँ नमाज के लिए खड़े हों बैठे हों वहाँ इनको पढ़िए और मांगिए। एक दिन आएगा कि ये दुआएं आपका अकीदा बन जाएंगी। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मेरे अकीदे की जो छोटी बड़ी बातें थी ना, जो नहीं पता होती हमें, बहुत सारी नहीं बताती, चाहे हम कितने मर्जी तौहीद परस्त के, वो दुआओं से ठीक हुई हैं। और ये दुआओं की बुक्स में मेरे लिए, जो मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर डाला, वो हिस्नुल मुस्लिम ने डाला था, कि कैसे इंसान अल्लाह ताला के साथ लिपट के बात करता है। तो दुआओं को अहमियत दीजिए, जितना वक्त दुआओं पे गौर करें और पढ़ें, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको बेहतरीन तरीके से अपनी महदूदियत को जानते हुए अल्लाह के दीन की खिदमत पे जमाए रखे, और ज़िंदगी के आखिरी दम तक हमसे ये खिदमत ले। कभी हमारे नफ्स का कोई भूत, कोई शैतान, कोई जिन हमारे ऊपर काबू ना पाए, और हम अच्छे खासे इस काफ़िले में चलते चलते इससे जुदा ना हो जाएं। अब चलते हैं हम सूरत रूम पे, 21वां पारा कंटिन्यू है। अब देखिए कि इस पारे में हम एक सूरत शुरू का हिस्सा, सूरत अनकबूत की आयत पढ़ चुके हैं। अब सूरत रोम है, फिर सूरत सजदा आएगी, फिर सूरत लुकमान आएगी, फिर सूरत अल अहज़ाब उसका कुछ हिस्सा शुरू का आएगा। अगर आप सारी सूरतों को और सारी चीज़ों को जमा करें ना, तो तलाश हक़ का सफ़र है ये। इस हक़ के काफ़िले में क्या क्या तकलीफ़ें सही गई थी, उसी की बातें हैं। और इस पारे की जो शख्सियत हज़रत सलमान फ़ारसी है, उनके बारे में रिवायत आती है कि जन्नत इनकी मुश्ताक है। ये सारी ज़िंदगी हक ढूंढते रहे, और इन्होंने कितने सफ़र किए, मेरा हाल थोड़ा सा भी बता दूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी पे चंद बातें लीजिए, आपको बता दूँ कि ये पहले मजूसी थे, आबाई मज़हब इनका फायर वर्शिपिंग थी। लोगों ने इनके सामने कुछ तारीफ़ें की, तो इन्होंने मजूसियत को छोड़कर ईसाइत लेना चाहिए, तो इनके बाप ने इनको जंजीरों में जकड़ दिया। यानी आप देखिए ये कहाँ से निकले और कहाँ गए, और कहाँ से कहाँ ढूंढते जाते रहे। आप सब कुछ पढ़िए इनके बारे में अहादीस में से। फिर महज दीन हक की तलाश में अपना घर बार छोड़ा, अजीज़ व अकारिब छोड़े, और इस्फहान से दमिश्क, जो तकरीबन 1780 1780 किलोमीटर बनता है, यानी 1780 किलोमीटर तय करके उस जगह पे आए। हक की तलाश थी इनकी, लेकिन वहाँ से होते हवाते आगे गए, तो फिर दूसरा सफ़र दमिश्क से मूसल 803 किलोमीटर का तय किया। मैं आपको ये क्यों सुना रही हूँ कि ये नाम ऐसे ही नहीं चुने गए, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने सफ़र किए, हिदायत का सफ़र घर बैठ के नहीं होता। घर बैठने से मुराद अब घर बैठना इस वक्त नहीं है, यानी हाथ पे हाथ रखने से नहीं मिलती हिदायत। ए दिन सिरातल मुस्तकीम कहने से नहीं मिलती हिदायत, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ते हैं। बहरहाल तीसरा सफ़र इनका मूसल से नसीबैन का था, 207 किलोमीटर। जाके जमा कीजिएगा, तकरीबन 3,000 किलोमीटर सफ़र किया, ट्रेनों बसों जहाज़ों पे नहीं। कहीं कुछ मिली होगी सवारी, कहीं नहीं मिली होगी। और चौथा सफ़र फिर नसीबैन से अमूरिया नाम की जगह, 1,159 जो भी होता है 69 किलोमीटर तक सफ़र किया। हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी सारी कोशिशें कर चुकी हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट। गलत कहते हैं हम, माफ़ कीजिए मुझे आप, आई ट्राइड अ लिटल, ये ठीक है। बेस्ट नहीं, आई ट्राइड फॉर गुड, बेटर। बेस्ट नहीं, हमने कभी भी आज तक पूरी कोशिश की नहीं। अभी भी सफ़र नहीं पूरे हुए, चार सफ़रों के बाद पांचवा सफ़र अमूरिया से, जिसका आज का नाम खिसार कोई है। वहाँ से फिर सर ज़मीने हिजाज़ में पहुँचते हैं, 2,532 किलोमीटर सफ़र तय किया। कभी आप उमरे पे अल्लाह ले जाए और हज पे ले जाए, जहाज़ में अमूमन एक स्लाइड चलती रहती है पूरा वक्त। इतना रह गया डेस्टिनेशन, इतनी इतने किलोमीटर, इतने, मेरा फेवरेट काम है, पूरा वक्त यही ढूंढती रहती हूँ किधर किधर क्या। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये सारे सफ़र कोई नरमी के या वो फर्स्ट क्लास के नहीं थे। अमूरिया के सफ़र में हज़रत सलमान फारसी को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि ग़ुलाम बना लिए गए। आज़ाद शख्स ग़ुलाम बनता है, लेकिन हिदायत की तलब में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कुछ अरसा ग़ुलामी में गुजारा। अल्लाह अकबर। और बिलआख़िर फिर उन्होंने अपनी जद्दोजहद का समरा पा लिया। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए, सलमान को पता चल गया, खुशी से निहाल हुए, कहने लगे कि मैंने अपनी मंजिल पा ली। आपको मुझे घर बैठे कुरान मिल रहा है, माफ़ कीजिएगा, आपके इस कुरान चल के आ गए, इसलिए आपको वैल्यू नहीं होगी। आपको तो है माशाल्लाह, मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन आज हम मुसलमानों को वैल्यू नहीं है। आपको क्या बताइए, क्या ख़जाना बट रहा है? आप छोटी छोटी बातों की वजह से, छोटे छोटे नामों की वजह से, तासुब आप या सोने की वजह से, या ईद की तैयारियों की वजह से छुट्टी कर ले ना आए, आपकी खुशी है। हज़रत सलमान फारसी जब मदीना में आते हैं, अमूरिया के एक आलिम ने उनको बता दिया था कि हमारी किताबों में आखिरी नबी की कुछ निशानी है। इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से अल्लाह के नबी को पहचाना, और आपके कमीज़ भी उतरवाई और पीछे से मोहर नबूवत देखनी थी, जब देख ली तो फ़ौरन ईमान लिया और ख़ुशी से रोने लगे। ज़ारो क़तार रोए कि ये है वो शख्स जिसकी मुझे तलाश थी। देखिए, ये इल्म का पानी घाट घाट से बंदा पीता है, लेकिन जिस जगह बैठकर आपको ये महसूस हो ना कि ये मेरी रूह की पुकार है, ये थी वो चीज़ जिसके लिए अल्लाह मुझे इतने सालों से तैयार कर रहा था, तो शुक्र के सजदे करने शुरू कर दें। इन्होंने अल्लाह के नबी को तोहफा दे कर पहचाना, सदका देकर पहचाना। अच्छा भला ये सदका लेते हैं कि नहीं? आपने कहा नहीं लेना, तोहफा दिया तो ले लिया। कहा ये भी निशानी ठीक हो गई, ये हो गई, वो हो गई। और आपको पता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद कराने के लिए, अब यहाँ जो जुमला बोलूँगी ना, इसको सोच के बोलूँगी, एक सलमान जैसा शख्स जो आज़ाद था लेकिन ग़ुलाम बना लिया गया, नबी अपनी महदूदियत को भी जानते थे और साथियों की खूबियों को भी जानते थे, आपने भांप लिया कि ये शख्स इस्लाम के लिए एक एसेट है। 300 खजूरों के फलदार दरख्त और 40 ओखिया चांदी एक यहूदी को अल्लाह के नबी ने दी और सलमान को आज़ाद कराया। अच्छे लोगों को भारी कीमत पे भी ले लें, बेकार चीज़ें तो बेकार ही होती हैं। और याद रखिए कि उनको तो नहीं दिया अल्लाह के नबी ने, लेकिन उनकी ज़ात पे नहीं लगा, लेकिन इस्लाम को तो मिल गई ना खैर। और हज़रत सलमान फारसी ग़ुलामी की वजह से बदर और उहद में शरीक ना हुए, उसके बाद से A to Z सारे गज़वात में अल्लाह के नबी के साथ शरीक हुए। उनको पता था कि मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है अल्लाह के नबी की, इस्लाम की, फिर उन्होंने भी अपने आप को निचोड़ दिया। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। आपकी ज़ात पे 1 रुपया भी लग जाता है ना, तो फिक्र किया करें कि अल्लाह इसका हक भी तो दे दूँ, कोई भी लगाए लेकिन मैंने इसको ज़ाया तो नहीं होने देना। और इस तरह से फिर अल्लाह के नबी ने हक की तलाश के लिए हज़रत सलमान फारसी की कोशिशों और उनकी कुर्बानियों की तारीफ़ फरमाई। अल्लाह के नबी चीदा चीदा अपने साथियों की तारीफ़ें किया करते थे। आपने फरमाया कि अगर ईमान सुरैया, आप कहते हैं कि ज़मीन से सबसे दूर जो सितारा है ना, तवील तरीन दूर है फासले पे, उस सितारे का नाम है सुरैया, अगर इस ईमान सुरैया पर भी होता तो सलमान और उसकी कौम उसको वहाँ से भी ले आती। अल्लाह अकबर। अगर अरब लोग ईमान से फिर जाते तो गैर अरबों में से अल्लाह ताला सलमान फारसी की कौम को मंतखब फरमाता। और आप कहते फारस से कौन है, वो अल्लाह की अपनी तारीख पढ़ें। इमाम बुखारी, हम कहाँ सो रहे हैं, हमारे पास वक्त क्यों नहीं है, क्या पढ़ा हमने, क्या जाना हमने। यानी अल्लाह के नबी की बात है कि अगर बिलफर दुनिया से सारे अरब ख़त्म हो जाए ना, तो इमामत किसको मिलेगी, फारस के लोगों को मिलेगी। और अल्लाह के नबी ने रात के औकात में सलमान के तरीक़ा इबादत की तारीफ़ फरमाई कि जब आपको पता चला कि हज़रत सलमान क्या करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं और फिर पिछले पहर उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं, आपने कहा कि ये तरीका सबसे बेहतर है। और इल्म और फ़ज़ल में सहाबा से मुमताज़ थे। अल्लाह के नबी ने इनके बारे में कहा कि चार लोगों से इल्म हासिल करो, वन ऑफ फोर वास सलमान फारसी। अल्लाह को कोई अरब अजम का फ़र्क नहीं है, कोई अरबियों का ये सर पे ताज नहीं रखा हुआ, कोई हाशमी, कोई सैयद, कोई फलां, नामों से नहीं बचेगा, कामों से बचेगा इंशाल्लाह। और आप पता है कि इनको खंदक के मौके पे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सलमानु मिन्ना अहलल बैत। कितनी बड़ी ऑनर है, सलमान हमसे हैं यानी मेरे अहले बैत में से हैं। एक साथ बिगाने पराए गैर बंदे को आप अपने घर वाला कह दें, इससे भी बड़ी को ऑनर होगी किसी की। हज़रत अली ने एक मौके पे हज़रत सलमान फ़ारसी की तारीफ़ की और उनको खिराज तहसीन पेश किया। आपने फरमाया तुम में से, यानी सलमान फ़ारसी के बारे में लोगों ने कहा आपकी क्या राय है, कहा कि जो लुकमान हकीम का दर्जा है ना, वो हमारे दीन में सलमान फ़ारसी का, और वो हमारे अहले बैत में से है। पिछला पहला सारा इल्म हासिल किया, किताब पढ़ी, वो ख़त्म ना होने वाले इल्म के समंदर थे सलमान फ़ारसी। मास बिन जबल ने एक आदमी को नसीहत करते हुए कहा कि चार लोगों से इल्म लो और उसमें से एक सलमान फ़ारसी थे। लेकिन इनकी अपनी आजजी और अपनी इनके सारी क्या थी, डाउन टू अर्थ थे, बड़े लो प्रोफाइल पे काम करते थे। अपने आप को कोई बहुत बड़ा बड़ा हाई फाई करके नहीं पेश करते थे कि मैं आलिम और मैं फलां और ये और वो। इतने यानी सादगी के साथ अपने इल्म को लोगों तक दे आते थे और कभी किसी को फील भी नहीं होता था कि इतना बड़ा बंदा हमारे पास से गुजर गया। याद रखिए लोगों जैसे बन के रहे। एक मौका ऐसा था कि हज़रत सलमान कहीं से गुज़रे और किसी को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था हमारे पास इतनी बड़ी शख्सियत बैठी है। जी, और इनके अपने बहुत खूबसूरत अकवाले ज़रीं मौजूद हैं, किताबों में पढ़ के देखिए। आपको अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, बीमारियां ख़त्म हो जाएं, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, और जो सारा वक्त आपका इधर उधर चीज़ों में लगता है जो कि जायज़ है, हलाल है, मुबाह, वो आप इल्म के लिए आ जाएं। अगर आपने ये अगला जो कोर्स ऑफ़र हो रहा है, फुल टाइम कोर्स, एक दफ़ा एज अ स्टूडेंट मोड में आकर कर लिया तो आपको कोई पहचान नहीं सकेगा। ये मैं आपको बता दूं, हम उठते बैठते चलते फिरते, अब मैं पाकिस्तान हूँ, अब अमेरिका हूँ, अब वहाँ जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, एक तो आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, अब क्या करें, वो तो और बात है। लेकिन अगर आपको जम के इल्म लेने का मौका मिले तो मेरे पास ऐसे दो तीन नाम है अपने माशाल्लाह साथियों में से, पूरे कोर्स के दौरान उन्होंने एक छुट्टी नहीं की, सफ़र नहीं किए, पाकिस्तान आते थे नहीं आए, छुट्टी नहीं करनी उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया, उम्रे पे नहीं गए उस पूरे अरसे में, क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं करनी। तो जो एज अ स्टूडेंट आप कुर्बानियाँ देते हैं ना, वो बाद में एक एक करके मल्टीपल्स के साथ आपको वापस मिलती हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इल्म के लिए आजजी भी दे दे और ये फील करा दे कि हमें ज़रूरत है। हम ये ना कहें नहीं तर्जमा तो मुझे आता है, सुनाए ज़रा। नहीं, अभी काफ़ी दिन से भूला हुआ है। अच्छा, आता तो है लेकिन क्या उसके पास है। और आपको तो इनकी वफ़ात के वक्त क्या हुआ था, इनके पास 20 दिरहम थे और ये उस पे शर्मिंदा थे कि मैंने दुनिया जमा कर ली। आज उनकी दौलत की वजह से उनका नाम तो नहीं आ रहा, उनका बंगला, उनकी मिल, फैक्ट्री, खुद्दाम, खुशाम, नो। कहते हैं कि हज़रत साद बिन वक्कास इनकी आदत के लिए आए तो ये रो रहे थे। पूछा, सलमान मेरे भाई क्यों रोते हो, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह की सोहबत हासिल नहीं रही। देखिए साहबा कैसे एक दूसरे को तसलियाँ देते थे कि देखो देखो आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हो, क्या अल्लाह ने आपको फ़लाँ फ़लाँ नेमत नहीं दी। सलमान ने फरमाया, मैं इन दोनों बातों में से किसी बात पर नहीं रोता, ना दुनिया छोड़ने की वजह से, ना आखरत को बुरा समझने की वजह से, बल्कि रसूलुल्लाह ने मुझसे एक अहद लिया था और मुझे महसूस होता है कि मैंने वो अहद पूरा नहीं किया। हज़रत साद ने पूछा वो अहद क्या था। आपने कहा अल्लाह के नबी ने मुझसे ये अहद लिया था कि दुनिया से बस इतना ही माल लेना जितना एक मुसाफिर ज़्यादा राह लेता है ट्रैवल के साथ। जो जब वो पिकनिक पे जाते हैं ना, तुम्हारी टोकरियाँ और बिरयानी के पतीले और खाने उसको जहन में ले आए, यानी जितना मुसाफिर के साथ है। और अब मैं देखता हूँ कि मैंने इस अहद की पासदारी नहीं की। पस है साथ मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, जब कोई फैसला करो तो अल्लाह से डर कर करो, जब माल तकसीम करो तो अल्लाह से डर कर करो, जब किसी भी काम का इरादा करो तो अल्लाह से डर कर करो। यानी इनका अंदाज़ नासिखाना था, लोगों को आम बातों में भी नसीहतें करते थे, इसीलिए इनके बहुत सारे अकवाले ज़रीं मौजूद हैं। और हज़रत साबित कहते हैं कि सलमान जब फौत हुए तो उनका विरसा देखा गया कि है कितना, तो उनके पास 20 से कुछ ज़्यादा दिरहम मौजूद थे जो उन्होंने अपनी ज़रूरियात के लिए रखे हुए थे। इब्न माजा की ये रिवायत है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ वो क्यों ना हो, रदी अल्लाह अन्हुम व रदुआन। जन्नत सलमान फारसी के दीदार की मुंतजर है। आप और मैं किसके दीदार के मुंतजर हैं? जन्नत के और अल्लाह के दीदार के। और हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत तीन आदमियों का शौक रखती है। पता नहीं इधर से भी कोई कुर्सी आपका शौक रखती होगी, आपको मुझे नहीं पता, क्योंकि वही का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये बेजान जगहें, ज़मीनें, गाड़ियाँ, टुकड़े भी गवाह होते हैं। ये कुरान की आयत है, आगे शायद सूरह दुखान में हम पढ़ेंगे। आसमान भी रोता है, ज़मीन भी रोती है बुरे कामों पे, या अच्छे बंदे के फौत होने पे या जाने पे वो रोती है। और माँ कद्दम हुआ सारा हम सूरह यासीन में भी पढ़ेंगे। ये ज़मीन के टुकड़े खुश नसीब होते हैं जहाँ अच्छी बातें होती हैं। तो जन्नत तलब करती है तीन लोगों की, उनमें एक सलमान फारसी, दूसरे पता है कौन है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और तीसरे अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु। पता नहीं आपके मेरे लिए क्या आगे लिखा हुआ है, दुआ कीजिए कि अल्लाह को पालें। जितना अल्लाह सुब्हान तआला के साथ आपका ताल्लुक़ बढ़ता जाएगा ना, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही होती हूँ ना, ये असल में कायना होता है। आप 8 नहीं 20 तरावियाँ पढ़ लें, आप ताक रात में वो जो बीच में 2-2.5 घंटे सोने थे वो भी ना सोएं, आप तस्बीह नमाज़ पढ़ लें, आप पूरी रात में 5 पारे करके कोशिश करें, चले 3 करके 10 रातों में एक नया कुरान भी पढ़ लें। पहले 8 तरावियां पढ़ें, बाद में 12 बजे तक या उसके बाद से लेके सहरी तक का फिर क्या मुलैल कर लें, ये अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये काम नहीं आएगा। असल चीज़ ये है कि आप अल्लाह को पालें। आप फातह से नाज तक एक नहीं 4 दफ़ा कुरान पूरा कर लें, वो नहीं होगा। जिसने अल्लाह को पा लिया, उसकी हकीकत को पा लिया, उसके अंदर एक जलजला आता है, उसके लिए वो एक दरियाफ्त होती है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को हिला देती है। वो कहते हैं मैं हूँ क्या। आप कह लीजिए कैसा शख्स एक ऐसे नूर में नहा जाता है जिसको आप रब्बानी नूर कहते हैं, फिर आपके अंदर से एक नया इंसान निकलेगा। मुझे नहीं पता दौरे कुरान से आपने कितना लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट आप में से एक नया इंसान निकलेगा, हर साल निकलते हैं। आपकी सोच एक नए रुख पे चलेगी, आपका अमल कुछ से कुछ हो जाएगा, और आपकी सारी एक्टिविटीज़ एक ऐसे इंसान की एक्टिविटीज़ बन जाएंगी जो अल्लाह के ज़ाहिर होने के इंतज़ार में नहीं, यूमिनूना बिलग़ैब की सूरत में ऐसे शख्स की वो एक्टिविटीज़ होंगी कि गोया कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है, कान्ना तराहू, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और फिर वो क़यामत की तराजू खड़ी होने से पहले अपने आप को क़यामत की तराजू पर खड़ा हुआ महसूस करता है। मोमिन का डे ऑफ जजमेंट ये दुनिया है, गैर मोमिन या गैर मुस्लिम के साथ जो वहाँ जाके होना है ना ईमान वाले के साथ, वो यहाँ होता है। वो हर वक्त अपनी अदालत में ख़ुद को ढूंढ रहा होता है, बलिल इंसान वाला नफसी ही बसीरा। तो बहरहाल मोमिन और गैर मोमिन का फ़र्क यही है कि गैर मोमिन पर क़यामत में गुजरने वाला है, वो मोमिन पर इसी दुनिया में गुजर जाता है। गैर मोमिन जो कुछ आखरत में देखेगा मोमिन वो इस दुनिया में देख लेता है, और जो मोमिन नहीं है कल के दिन जो कुछ मजबूर हो के मानेगा ना, आज मोमिन बग़ैर किसी मजबूरी के उसको मानता है। दुआ करें इस दर्जे पे हम अपने रब को पा लें। तो ये चंद बातें नहीं, बहुत सारी बातें थी, जिसके बाद अब इस पारे को पढ़ना हमें यकीनन फ़ायदा देगा।